इसलिए उलमा ने तरबियत औलाद में सबसे पहला मरहला जो रखा है वो है इंतखाब हमसर का। देखिए तरबियत औलाद औलाद से शुरू नहीं होती, इंतखाब हमसर से शुरू होती, ये पहला है सबसे। ख्वाह बीवी हो ख्वाह शौहर, साचा सही होगा तो प्रोडक्ट भी सही निकलेगी। अक्सर वालिदैन देखिए उनकी जिम्मेदारी की जब तलाश में निकलते हैं, अपने लिए दामाद की तलाश में, अपने लिए बहू की तलाश में, बहनें निकलती हैं अपने लिए भाई भाभियों की तलाश में, तो उसमें ढूंढी जाने वाली खसूसियात में जो सबसे कमतर चीज है वो दीन है, सबसे कमतर। बल्कि अगर पाया जाए तो शायद वो रिश्ता रिजेक्ट भी हो जाता है। बहुत सी जगहों पर देखा कि अच्छा दीनदार है नहीं भाई यहां पर शादी नहीं करेंगे। यानी खुद मेरा अपना नाकिस तजर्बा, जिसकी कोई तजिस तजर्बा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने जितना भी कुछ देखा है, मैंने यकीन कीजिए बेनमाजी होने की वजह से किसी की तलाक नहीं देखी, नमाजी की तलाक देखी, नमाज जिसमें नमाज को बेस बनाया गया हो, नमाज जमात में जाने की वजह से मैंने एक तलाक देखी कि नमाज जमात के लिए हर दफा मस्जिद, हालांकि 3 अवकात दिन में मसलन वो जाता था, इस वजह से तलाक हो गई। तो अच्छा फिर उसके बाद जब इन खसूसियत नहीं देखी जाती तो फिर जो बहू आती है उसके बाद सासु नंदों का जो हशर करती है, जाहिर है वो जिन खसूसियात को देख के लाती हैं। यानी खुद इस मदरसे में पढ़ने वाली बहुत सी ऐसी खवातीन जिनकी पूरी पूरी बहनें दीनदार थी, इस मदरसे में पढ़ती थी, जब अपने भाई के लिए तलाश करने निकली तो किसी खसूसियत को नहीं देखा, सिर्फ वही बाहर खूबसूरती और अच्छा खानदान या मालो दौलत को देखा। उसके बाद उसी ने आकर उनका जो तिगनी का नाच उसके बाद नचाया उसने, तो वो उससे नतीजा जो है वो सामने आ गया। देखिए ये ऐसी चीज है कि शादी के दिन ही कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन जो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो कहा जाता है कि असल में ये उसकी इब्तदा हो रही होती है उस फॉर्मेलिटी की तरह से, जिस तरह दो बॉक्सर्स जब रिंग में जाते हैं तो एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, क्योंकि तरबियत याफ्ता नहीं, उसके बाद तो उन्होंने दंगल बनाना है घर को। तो जो अभी तरबियत औलाद की पहली सीढ़ी थी सही जगह पर शादी होना, देखिए शादी को खुद बड़ा खौफनाक आजकल बना दिया गया और बड़े लतीफे भी बना दिए गए कि जनाब एक शादी फकत एक वर्ड नहीं है, ये सेंटेंस है, लेकिन है लाइफ सेंटेंस उमर कैद। शादी को कहा जाता है कि जनाब शादी जो है एक वर्कशॉप की तरह से, जिसमें मर्द जो है वर्क करता है और औरत शॉप करती है, या कहा जाता है कि शादी करना कोई भी मसला नहीं, शादी ऐसी है जैसे पार्क में घूमना के, लेकिन कौन सा पार्क, जोरेसिक पार्क। तो बहुत सारे देखिए लोग इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट आके इंसान हैबतनाक हो जाए, परेशान हो जाए कि गोया शादी वो करने जा रहा है तो बहुत ही कोई खौफनाक चीज उसके साथ पेश आने वाली। देखिए उलमा एक बात और कहते हैं कि देखिए शादी की उम्र में जल्दी करनी चाहिए, इंतखाब में देर करनी चाहिए। देखिए बड़ा अजीबोगरीब जुमला है, इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। शादी की उम्र में जल्दी करें, यानी जल्दी अर्ली एजेस में जो है बच्चों नौजवानों की शादियां हो जाएं, लेकिन इंतखाब में देर करनी चाहिए, जरा ठोक बजा के देखना चाहिए, अपने दीनी मेयारात को देखना चाहिए। और शादी के एतबार से, यानी जिसके लिए अंगूठी पहनने जा रहे हैं, कुछ पता तो हो, क्वेश्चन मार्क वहां पर होना चाहिए, किससे शादी करने जा रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर अगर आम शहरी बनाने वाली प्रायोरिटी है औलाद को तो ठीक है, फिर तो आप जिस तरीके से हो रही हैं उस तरह से, लेकिन अगर कोई सआदत अबदी हासिल करनी है, जन्नत हासिल करनी है, दोजख से अपने आप को बचाना है, तो कुछ मेयारात हैं। लड़कों के एतबार से देखिए दीनी मेयारात में कम से कम ये होना चाहिए कि कम से कम उसे नमाजी होना चाहिए, रोजेदार हो, नमाजी हो। यानी मेरा जाती मशवरा ये कि आदत और मिजाज से वाकफियत देखिए जरूरी। मर्दों के एतबार से इस बात की तहकीक जरूर कर लेनी चाहिए, वरना बाद में नतायज बहुत खराब निकलते हैं। कम से कम ये नमाजी के बाद ही तो उसे वसीला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स बहुत गुसीला है, एंग्री यंग मैन, तो ऐसे लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। खुदा उन लोगों को भी मिजाज तब्दील करके उनकी भी शादियां करवाए, नहीं कि वो ऐसी रह जाएं, लेकिन बहरहाल ये कि ये इनके साथ गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें वाकई दिक्कत करनी चाहिए, यानी जरा सोच ठोक बजा कर देखना चाहिए। अच्छा औरत को का भी इंतखाब सोच समझ के होना चाहिए, उसके नफ्सियात समझते हुए। अलबत्त ये जरूर है कि उलमा का तो खैर नहीं है, लेकिन लोगों ने मजाक के तौर पे कहा है कि जनाब औरत को समझना बड़ा मुश्किल काम है। औरत को समझने का खुलासे का जो पहला हिस्सा है वो भी इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा जो है वो तफसीली है, और मर्दों को समझने के बाद जो समझे कि वो आखिरी जो है वो किताब, वो भी इतनी, और वाकई उसके अंदर ज्यादा पेचीदगी नहीं। अलबत्ता ये है कि अगर गलत औरत का मसलन इंतखाब करके ले आए, तो अक्सर हमने ये देखा है कि, अच्छा एक बात उसके अंदर और भी कह दी जाए कि बहुत से लोग कहते हैं कि गलत औरत का इंतखाब करके भी आ जाए तो अक्सर बहुत बेदीन अफराद भी दीनदार हो जाते हैं। एक साहब कह रहे थे कि बेगम मैं तुम्हारी वजह से मेरा अकीदा ठीक हो गया, वो भी बड़ी हैरान हुई, कहने लगी वो कैसे, कहने की इस वजह से कि तुमसे शादी से पहले मैं जहन्नुम पे यकीन नहीं रखता था। तो ये घरों के अंदर देखिए सब कुछ हो रहा है। तो अगर शौहर और बीवी में से एक भी बेतरबियत और खराब निकल गया तो वो दूसरे की गई तरबियत को बिल्कुल जीरो कर देता है, नलीफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी आप बच्चे को बनाना चाहते हैं नमाजी और बाप जो है वो नमाजें पढ़ता ही नहीं और अक्सर कजा करता है, बच्चे को बनाना चाह रहे हैं रोजेदार और रमजान में बाप को खाते पीते देखता है, आप मसलन उसको बचाना चाहते हैं गानों से और बाप रिमोट लेकर बैठ जाता है या नाना दादा रिमोट लेकर बैठ जाते हैं और वो बैठ के जो है गाने और मौसीकी उसके ऊपर सुन रहे हैं बैठे हुए। तो ये बच्चा जब इस किस्म के तजादात को देखता है तो वो बहुत कंफ्यूजन का शिकार होता है। बाप मना कर रहा है, वो दादा हजूर ये वाला काम कर रहे हैं, माँ ये कर रही है, बाप उसके बरखिलाफ बात कर रहा है। तो ये तजादात की वजह से बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं हो पाती। तो जरूरी है, अच्छा या उल्टा भी कर लीजिए, बाप अगर दीनदार हो और वो मसलन बेटी को बापरदा बनाना चाहे और माँ जो है वो हिजाब नहीं करती हो तो किस तरीके से बच्ची वो करेगी, यानी दूसरे की तरबियत को खराब कर दिए कर देते हैं। जैसे हम खुद हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं, मैं एक जगह पर शायद यूएई में किसी जगह पर मजलिस पढ़ने के लिए जाता हूँ, जब पूरा हफ्ता या पूरा अशरा मैं नमाज की अहमियत के ऊपर पढ़ता हूँ, बाद में एक जाकिर साहब वहां पर आते हैं और उसके बाद उसी जगह मजलिस पढ़कर नमाज के बिल्कुल बरखिलाफ मजलिस पढ़ते हैं कि हजरत हुर ने कौन सी जो है वो नमाजें पढ़नी थी और देखिए वो कितना मुकाम हासिल किया और सर चीज अकीदा होना चाहिए और अमल की इतनी हैसियत नहीं है जिसको बढ़ा दिया गया वगैरह। यानी मेरे पूरे 10 मजलिसों में इसमें मैं मेहनत करता हूँ, उसके बाद वो शख्स एक मजलिस में आकर उसको जाया करके चला जाता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ पूरी कोशिश कर रही है, बाप के दर्ज अमल की वजह से सारी तरबियत बेकार हो रही है, बाप पूरी कोशिश कर रहा है, माँ की तरबियत की वजह से पूरी चीज खराब हुई जा रही है क्योंकि माँ की तरबियत खुद जो है वो ठीक नहीं हुई। तो अच्छा, अब जिन लोगों की शादियां हो गई हैं, अब वो कहेंगे यार भाई इंतखाबे हम सर, हम कोई नई शादी तो करने नहीं जा रहे हैं, अब हम क्या करें, कोई हम ये भी नहीं कर सकते कि कोई रिवर्स गियर लगा दें और माजी के अंदर चले जाएं टाइम मशीन में बैठ के, जिस तरह लतीफा भी मशहूर है ना, शादीशुदा अफराद को अगर बहुत उदास अगर कोई शख्स हो तो वो अपनी शादी की वीडियो को उल्टी चलाकर देखे, बीवी अपनी उंगली से अंगूठी उतारेगी, कार से निकलेगी और अपने घर वापस चली जाएगी और ये रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल। तो अभी ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि हम कोई रिवर्स जो है वो गियर लगा दें और माजी के अंदर चले जाएं और फिर कोई इंतखाब करके लाएं। अब इसका एक ही चीज हो सकती है, वो ये है कि जो एक तरबियत याफ्ता शौहर और बीवी में से हो गया वो दूसरे अपने शरीक हयात की तरबियत का एहतमाम करे। अब उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, यहां ये होता है कि आज आप तरबियत याफ्ता हो गए तो बटन दबाने से अगले दिन शौहर भी तरबियत याफ्ता हो जाए, या शौहर बटन दबा के बीवी को अगले दिन से तरबियत याफ्ता कर दे, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, औरतें और मर्द जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, उनको घरों में दर्स का इनेकाद करें, दरूस सुनवाएं, किताबें लेकर आएं, हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाएं, अपने फ्रिज के ऊपर हदीसें लिखकर लेकर लगाएं और किताब से कोई चीज ऐसी अच्छी चीज पढ़ें उसके इल्म में लेकर आएं, ईमेल उसको कर दें, मैसेज कर दें, बहुत सारे तरीकेकार हो सकते हैं कि जिसपे अपने दूसरे शरीक हयात की तरबियत का एहतमाम इंसान कर सकता है, उसको बाकायदा जमजम पिलाने का एहतराम करें क्योंकि खुद अंदर जाकर बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने पिछली नशिस्त में भी अर्ज किया था, इसके अंदर बड़ी खसूसियात हैं, यानी बहुत सारी चीजें जो है वो की जा सकती हैं। आपस में बुरे अल्फाज एक दूसरे को इस्तेमाल ना करें, बुरे अलकाबात इस्तेमाल ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें कि एक फरीक मजहबी हो गया तो फौरन दूसरे को भी चाहता है डंडे के जोर पे करवाना चाहे तो ये मुमकिन नहीं होता, उसका माइंड तब्दील करना पड़ता है, बुरे अल्फाज कहने से इज्तनाब करना पड़ता है। वो जो देखिए कितनी चीजें इस तरह से दिमाग में आ रही हैं कि वो चोर कहता है कि मसलन मैं दिल चाहता है कि तुम्हारे लिए जो है वो एक कॉलोनी का नाम और एक चौरंगी का नाम तुम्हारे नाम पे रखूं, एक मसलन नागन चौरंगी और भैंस कॉलोनी मसलन। तो अब ये तमाम चीजें क्या होगा कि औरत को उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है इस किस्म की बातें करने से, तो फिर ये कभी दीन की तरफ उस अंदाज से रागिब नहीं हो सकती। इसी तरीके से औरतें हों अपने शोहर को जहानत से राम करके दीन की तरफ लेकर आए। देखिए आप कितनी चीजों में तो उसको राम करती हैं, कैसे उससे जो है पैसे निकलवा लेती हैं शॉपिंग के, कितनी चीजों में उसको जो है एक लिहाज से बेवकूफ बना के काम लिया जाता है, तो दीन में अपनी जहानत को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। देखिए बड़ी अहम चीज है कि वैसे तो देखिए घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो रहा है और जबान दराजी हो रही है, लेकिन जबान को दीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए कहा जाता है ना कि क्या करें ऐसा कि हाथी जो है लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगे, तो जिसका जवाब है कि हाथी की लोमड़ी से शादी करवा दी जाए। यानी ये इसके माने ये हैं कि वाकईतन ये एक ऐसा बंधन है कि इसमें आमतौर पर शहरी जिंदगी में मर्द हजरात ना बीवियों की बातें मानते हैं। तो देखिए अब बज़ाहिर जो कि हमने देखा है कि अगर औरत दीनदार नहीं है या तरबियत याफ्ता नहीं है और शादी करके दीनदार फर्द के पास आ जाए, तो ऐसी खवातीन बनिस्बत मर्दों के ज्यादा अच्छे अपने शोहर को दीनदार बना लेती हैं। यानी दीनदार लड़की और शोहर बेदीन हो तो बहुत जल्दी शोहर को दीनदार बना लेगी। अच्छा शोहर दीनदार है और बीवी दीनदार नहीं है तो बहुत हुआ तो शोहर के जोर और जबरदस्ती से हिजाब कर लेगी, पर्दा कर लेगी, लेकिन तब्दील नहीं होती, बहुत कम देखा है तब्दीली उसके अंदर आते हुए। तो बहरहाल देखिए ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि बहुत कम ऐसा होता है। आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि शहरी जिंदगी में तो मर्द हजरात सिर्फ खवातीनी की बात मानते हैं और औरतें उनको दीन की तरफ इस अंदाज से राग़िब कर सकती हैं। खवातीन के मामले में थोड़ी सी जरा चॉइस के एतबार से यानी कहा जाए कि औरतों के पास चॉइस कम है कि जाहिर रिश्तों का जो मसला है यहाँ पर वो इतना ज्यादा उनका नहीं चलता कि वो इतने मेयारात वाले लड़के को अपने लिए तलाश करें, मुंतखब करें। आमतौर पर ये खवातीन के पास चॉइसेस नहीं, घर वालों के पास हैं। तो लेकिन ये भी जरूर है कि खवातीन के भी माइंड तकरीबन बदल गए हैं आजकल, और दीनदार खवातीन भी हैं वो भी। यानी अगर मालदार हो और उसके मुकाबले में एक दीनदार गरीब सा नौजवान हो, उसको पसंद नहीं करती, उसका रिश्ता खुद भी रिजेक्ट कर देंगी, तो इसमें खुद भी उनको अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। तो इसका हल यही है कि जो दीनदार अफराद हैं वो आपस में दीनदार घरानों में ही शादियां करें, ताकि ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट, वरना ये होता है कि ये हमेशा रस्साकशी आपस में चलती रहती है, कभी कामयाब हो जाते हैं उसमें तो दूसरा दीनदार हो जाता है, वरना दूसरा हमेशा एंटी और अपोजिट पार्टी का होकर बच्चों की तरबियत में हमेशा नुकसानदेह फरीक का पार्ट प्ले करता है। तो जब भी रिवायत के अंदर देखिए जुमला भी कहा गया कि इंसान की रफीका हयात गर्दन में डाले जाने वाले एक तौक की तरह से, अब तुम खुद फैसला कर लो कि कौन सा तौक अपने गर्दन में डालना पसंद करोगे, यानी लानत का तौक या मसलन रहमत का तौक। तो ये रिवायात के अंदर ये इस तरह से चीजें आई हैं। और बाज़ औक़ात सिर्फ क्या होता है कि अगर सिर्फ खूबसूरती को मेयार बनाया है, तो जो शख्स रिवायत में पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं या मसलन दौलत को मेयार बनाते हैं, उनके लिए कहा कि जो शख्स एक औरत का इंतखाब उसकी खूबसूरती की वजह से करता है वो कुछ जो चाहता है उसमें नहीं पाता, और जो शख्स एक औरत से फकत उसकी दौलत की खातिर शादी करता है तो खुदा उसको उसके हाल पर छोड़ देता है, लिहाजा तुम पर लाजिम है कि बा ईमान और दीनदार हमसर का इंतखाब करो। तो देखिए इसके अंदर कहीं भी माल और दौलत, खूबसूरती और दीगर मेयारात को नहीं बताया जा रहा है। ये अगर साथ में हासिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हासिल हो तो कम से कम कुछ चीजें इसके अंदर इस तरह से जरूर रखनी चाहिए कि जो बुनियादी सिफात हैं वो कम से कम उसके अंदर जरूर होने चाहिए। तो इसी तरीके से फिर ये भी कहा जाता है कि मसलन दीनदार है, सब चीज़ उसके अंदर है, लेकिन मसलन अच्छी जॉब या उस पर नहीं, उस पर भी वालदैन मना कर देते हैं। जब भी हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम फरमाते हैं इससे बढ़कर कोई और मुसीबत की बात ही नहीं है कि कोई जवान मोमिन अपने बिरादर ईमानी से उसकी बेटी की ख्वास्तगारी करे और बाप जवाब में ये कहे कि तुम क्योंकि माली लिहाज से मेरे हम पल्ला नहीं हो, लिहाजा मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, इससे बढ़कर मुसीबत की कोई बात नहीं। तो जिन मेयारात को हम बना रहे हैं उसकी वजह से वो जो इब्तदाई पहली सीढ़ी जो तरबियत औलाद में है वही खराब रखी जाती है, जिसकी वजह से वो सांचा खराब हो जाएगा, वो प्रोडक्ट कभी सही तौर पर नहीं आएगी। तो ये जब ये भी रिवायत में है कि औरत से निकाह तीन चीजों की खातिर किया जाता है, या दीन की खातिर या हुसन की खातिर या माल की खातिर, तो तुम दीनदार औरत को इख्तियार करो, और यही चीज मर्दों के हवाले से भी जो है वो कही गई। अच्छा अब देखिए बस जल्दी इस बात को खत्म करते हैं कि उलमा फरमाते हैं कि देखिए इंतखाबे हमसर जो है, जिसको भी तलाश किया जा रहा है, जिससे मुझ पर बच्चों की मुस्तकबिल का दारोमदार है नस्लों का, उसमें दो चीजें, या तो कुछ बुनियादी सिफात हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और कुछ सिफात कमाल हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बुनियादी सिफात जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उसमें मसलन एक है दीनदारी। मसलन एक शख्स इमाम हसन के पास अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में मशवरा के लिए आया, تو امام نے فرمایا اس کی شادی کسی متقی پرہیزگار شخص سے کرو، کیونکہ اگر اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و احترام کرے گا، اور دشمنی کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا، متقی و پرہیزگار شخص سے شادی کرو. تو کچھ بنیادی صفاتیں کم سے کم دیندار ہونا چاہیے، واجبات و حرام کا خیال کرنے والا ہونا چاہیے، مال حرام نہ کمانے والا ہونا چاہیے. تو جو مال حرام جو کما رہا ہوتا ہے، جسموں میں جا رہا ہوتا ہے، بہت کم امکان ہوتا ہے کہ یہ سعادت مند ہو سکے. صف وسیلہ نہ ہو، جیسے کہ ابھی میں نے کہا بد اخلاق نہ ہو، اس کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب باقی جو خرابیاں ہیں وہ آپ رفتہ رفتہ اس کی دور کروا سکتی ہیں. اچھا، کچھ صفات کمال ہیں جن پر کمپرومائز اگر ہو جائے تو بہت اچھا، اس پہ کمپرومائز نہ کریں. بے دینی پر، بے نمازی پر، بہت زیادہ وسیلہ، بد اخلاق، مال حرام کمانے والا، اس کے لیے بہت مسئلہ مشکل ہو جائے گا. ہاں، صفات کمال پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، مثلا چاہے اس کی پڑھائی اتنی زیادہ نہیں آپ کے لیول کے مطابق، جاب اتنی زیادہ اچھی نہیں جتنی آپ کا معیار ہے، کاروبار اس کا اتنا اچھا نہیں چلتا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں، اس کے پاس ذاتی گھر نہیں کہ مثلا کہیں کرائے پر رہتا ہے، گاڑی اتنی اچھی نہیں ہے، یا مثلا موٹر سائیکل چلاتا ہے یا کچھ بھی ہے، ابھی اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یا اتنا اچھا کوئی بہت ریناؤنڈ خاندان نہیں ہے. آج کل یہ بھی بہت چیزیں ہو گیا کہ بہت اثر رسوخ والے ہوں تو ذرا اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ ترقی کر سکیں ان کے بیس پہ، ایسا نہیں. ان صفات کمال پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، یہ کچھ کم ہو تو کوئی بات نہیں، ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جو بنیادی صفات ہیں اس پہ کمپرومائز کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. اچھا، اب دیکھیے تربیت اولاد میں بنیادی صفات جو ذکر ہوئی ہیں ان کا اثر ہے، صفات کمال کا اتنا اثر نہیں، اس وجہ سے اس پہ کمپرومائز کرنے کو کہا ہے. اچھا، اگر اب کسی، ابھی تو میں نے لڑکے کی بات بتائی، اب لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو کم سے کم اسے باحجاب ہونا چاہیے، اس کو منہ پھٹ، بے باک یا بدتمیز نہیں ہونا چاہیے. تو بہت مشکل ہے کوئی شخص اپنی عادت تبدیل کر سکے بعد میں جو عادت بن چکی ہوتی ہے. یا مثلا حرام فلموں اور گانوں کی بہت زیادہ دلدادہ، اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. خدا ان لوگوں کی بھی اصلاح کرے، ان کی شادیاں کروائے، لیکن بہرحال جو عام طور پر صفات کمال پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی صفات ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر دونوں مل جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. اچھا، آج کل ایک چیز اور ہو گئی جو کہ بڑا علماء بھی اس کو تنقید کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے متعلق بات بیان کر رہے ہیں، جسے لوگ ایک دم سے اس کے اینٹی چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید اس کی بات کے خلاف بات ہو رہی. بھائی ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، اچھا پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے، کتنے ہی چاہے نقصانات اس کے کیوں نہ ہوں. اچھا، وہ پڑھنے پڑھائی کے دوران وہ جن اداروں کے اندر پڑھنے جا رہی ہے وہاں اس کا اخلاق و کردار کیسا خراب ہو رہا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اور پڑھائی کی وجہ سے اس کے رشتے ٹالتے جا رہے ہیں ٹالتے جا رہے ہیں ٹالتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خود جیسے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں، پھر یہ نتیجہ آ جاتا ہے کہ جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ میرے برابر کا پڑھائی والا رشتہ ہونا چاہیے، اس میں اور ٹائم لگ جاتا ہے ملنے میں. پھر وہ کہیں جاب کرنے لگتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ کم سے کم اتنا اسٹیٹس تو ہوئے تو مجھ سے بھی کم کماتا ہے، اس کی حیثیت مجھ سے بھی کم ہے، اس کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. پھر اور عمر اس کی آگے نکل جاتی ہے، یہاں تک ایک نئی کھیپ لڑکیوں کی، کم عمر لڑکیوں کی معاشرے میں آ جاتی ہے، تو اس بڑی عمر والی کا انتخاب کے بجائے چھوٹی عمر والی لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں لوگ. تو اس چکر میں اس لڑکی کی عمر نکلتی چلی جاتی. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جب والدین جائیں کہ بھائی ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، جیسے گئے تھے، اس کو اس طور پہ نہیں لینا چاہیے، مذاق کے طور پر ہی لیں اس کو، کہ خان صاحب گئے کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے، انہوں نے کہا خان صاحب ابھی تو لڑکی پڑھ رہی ہے، کہنے کہ ٹھیک ہے ہم ایک گھنٹے بعد آ جائے گا. پھر تو یا مقصد یہ کہ یا تو اتنی جلدی پڑھائی ختم ہونے والی ہو کہ آپ کہیں چند مہینے رہ گئے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کی شادی کر دیں گے، لیکن سال ہاں سال تک پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس دوران شادی کی عمریں ان کی نکلتی چلی جا رہی ہیں، بہت بڑے فساد اور خرابی کا باعث یہ چیز بن رہی ہے. اور وہ جو اس کے اخلاق اور کردار پر جو چیزیں مرتب ہو رہی ہیں، ساری زندگی، استاد شہید مطہری کہتے تھے ساری زندگی کا تقوی اور پرہیزگاری بھی اس کا جبران اور کمپنسیٹ نہیں کر سکتا جو اس کی روح کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے. اچھا، آیت اللہ ابراہیم امینی، جن کا میں نے حوالہ دیا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ، میں ان کا قول کوٹ کر چکا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ دیکھیے لڑکوں کے اعتبار سے اور لڑکیوں کے اعتبار سے جو زیادہ سے زیادہ عمر ہے اس کے بعد نقصان ہو جائے گا. اس یہ والی عمر اس کی اگر نکل گئی، کم و بیش آگے پیچھے اتنی عمر ہو، جس میں لازمی، کہہ رہے میں نے پوری تحقیق کی ہے، پوری اس موضوع کے اوپر पूरी रिसर्च की है, मैंने ये देखा है कि जो बेस्ट उम्र जिसके अंदर उसकी शादी हो जाना चाहिए कि लड़के की, उसके बाद उसकी इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि सारी जिंदगी उसका जुबरान नहीं हो सकता, उसकी रूह पे जो असरात मुरतब होंगे वो है कि उसकी उम्र 17 से 18 साल मैक्सिमम उसकी शादी हो जाना चाहिए। और अच्छा, अभी इसमें जितने भी सवाल आते हैं मुझे सब पता है, इसके बाद क्या दिमाग में सवाल आता आप सबके भी आ रहे होंगे, उन सबके भी जवाब आते हैं हमारे पास, लेकिन अभी इतना उसका वक्त नहीं है। हमें अभी सिर्फ तरबियत औलाद वाले, अगर सिर्फ शादी ब्याह के उस मौजू पर रहते तो उस पर बहुत तवील बात हो सकती थी, उन सब के हल भी हैं और जवाब भी। और लड़कियों के एतबार से कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा उम्र की जिससे ज्यादा ताखिर नहीं करनी चाहिए वो 15 से 16 साल, 15 से 16 साल, बहुत हुआ तो 17 साल। तो ऐसे अफराद लड़के ज्यादा जल्दी जिम्मेदार हो जाते हैं, ज्यादा जल्दी अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं, जो अर्ली जिनकी आप शादी कर देते हैं या मसलन निकाह कर देते हैं, वो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आम उन लड़कों की निस्बत। वरना क्या होगा, ये 30, 32, 35 साल का भी खलंडरा लफंगा नौजवान बन के घूमता रहेगा माशरे के अंदर। और अगर शादी जल्दी कर देंगे, कम से कम निकाह कर देंगे, तो ज्यादा संजीदा हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अगर इसको, जब भी पैगंबर इस्लाम की जुमला इरशाद फरमाते थे, एक अलग रिवायत में है, और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी, कि नौजवान लड़कियां दरख्त पर पके हुए फल की मानिंद है, जब ये फल पक जाए तो उसे फौरन उतार लेना चाहिए, वरना धूप और हवा इसको खराब कर देगी और वो खाने के लायक नहीं रहेगा। इसी तरह नौजवान लड़कियां जब बालिग हो जाएं तो फौरन उनकी शादी कर देना चाहिए, वरना वो किसी न किसी फितने में जरूर मुबतला हो जाएंगी। तो जल्दी शादी की उम्रों में वालदेन के, खुद जिनकी औलादें अब जवान हो गई उनकी तरबियत औलाद भी अब जवान होने के बाद ये कि वो जल्द शादी उनकी कर दें, ये आगे चलकर उसका पॉइंट बयान होगा जब हम मरहलेवार गुफ्तगू करते हुए उनकी जवानी के दौर तक चले जाएंगे। क्योंकि तरबियत औलाद एक इब्तदाई उम्र में खत्म हो जाने वाला टॉपिक नहीं है, अब नाना दादा भी इंसान बन जाता है, उसके बाद भी तरबियत करते रहना है। और मनफी शोहरत वाला कोई खानदान ना भी हो ये ज्यादा बेहतर है। जब भी रिवायतों के अंदर भी ये चीज आई है कि कूड़े पर उगे हुए सब्जे से बचो, यानी वो लड़की जिसकी गलत घरेलू माहौल के अंदर तरबियत हुई, यानी गलत तरबियत हुई है गलत माहौल में, यानी खूबसूरत लड़की है बाजार और सब चीजें, लेकिन उसके घर का माहौल बहुत खराब है, तो कहा कि कूड़े पर उगे हुए सब्जे से बचो। और एक रिवायत में कि बच्चे अपने मामू के मुशाबे होते हैं, यानी बेतरबियत याफ्ता उसके लड़की के बहन भाई वगैरह उससे तरबियत करके लाओगे तो उसी तरह के मुशाबे बच्चे पैदा होंगे। तो अच्छा, इसी वजह से निकाह कर देना उलमा कहते हैं बेहतर है कि अगर इनमें से एक भी गैर तरबियत याफ्ता है तो रुख्सती से पहले वो दूसरे जो फरीक है उसकी तरबियत कर सके। वो उस दौरान का पीरियड ज़रा रोमांटिक टाइप का पीरियड चल रहा होता है तो उसमें फरीकें एक दूसरे की बात मान लेते हैं, उसके बाद से तो फिर लड़ाई झगड़े हो तो मैंने आपको बता दिया कि वो बॉक्सिंग रिंग बन जाता है उसके बाद।